दिन भर 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर भारत आईं।
हमने लैंड बाउंड्री सॉल्व कर लिया है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात है उसमें जो आश्वासन दिया गया है उसी पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
रूसी मिसाइल सिस्टम की वजह से भारत पर लग सकता है अमरीकी प्रतिबंध।
रूस में बनने वाले S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
भारत के मौजूदा हालात पर PDP नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी का दावा।
जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कहते हैं तो हमारा मुल्क लिंचिस्तान बन गया।
आज होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। वो यहां विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आई हैं। साथ ही वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे समेत रोहिंग्या मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर सहमति दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही अमरिंदर सिंह ने डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने पर होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद नज़रबंद किए गए नेताओं को एक एक करके रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शख्स के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन्हें रिहा किया जाएगा। कल जम्मू में कई नेताओं को नज़रबंदी से रिहा किया गया था। पेरिस पुलिस बल के मुख्यालय के बाहर एक शख्स ने चाकू से लोगों पर हमला किया है। इस घटना में 4 अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस संघ के प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर मुख्यालय में ही काम करता था। उसे घटनास्थल पर ही मार दिया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसदों से कहा है कि उन्होंने अक्टूबर के आखिर तक यूरोपीय संघ छोड़ने को लेकर नए प्रस्तावों के जरिए स्थिति को संभालने की भरपूर कोशिश की है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया है कि वो ब्रेग्जिट को लेकर भेजे गए रचनात्मक और मुनासिब प्रस्ताव पर जवाब दे। फ्रांस में यूरोप की मंत्री एमिली डा मोन्शला ने कहा है कि ब्रिटेन की स्वीकार करो या छोड़ दो नीति से प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय संघ के नज़रिए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संसद को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा,
They do not deliver everything we would have wished. They do represent a compromise, but to remain
प्रस्ताव में वो सब कुछ नहीं था जो हम चाहते थे, लेकिन इसको लेकर एक समझौता जरूर पेश किया गया था। हालांकि मौजूदा स्थिति का कैदी बने रहना गतिरोध का कारण बन गया है। हमने इस मुश्किल स्थिति का समाधान करने का वास्तविक प्रयास किया है। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका और अफगान तालिबान से शांति वार्ता फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के बाद कुरैशी ने ये बात कही। कई सप्ताह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता को मृत करार दे दिया था। इस्लामाबाद में पिछले महीने अमरीका और तालिबान अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी के समझौते पर पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रंप ने अचानक ही बातचीत को रोक दिया। कुरैशी के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने कहा,
पाकिस्तान वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑल एफर्ट्स टू अचीव परमानेंट पीस इन अफगानिस्तान व्हिच वाज एसेंशियल फॉर पाकिस्तान्स ओन सोशल।
अफगानिस्तान में स्थायी शांति लाने की हर कोशिशों का पाकिस्तान समर्थन करता रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान समुदाय के सभी तबकों को शामिल करके शांति और सुलह प्रक्रिया तक पहुंचा जा सकता है। पिछले साल से जारी तालिबान अमरीका की शांति प्रक्रिया का पाकिस्तान समर्थन करता आया था। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ BBC हिंदी .com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर आज भारत आई हैं। बांग्लादेश में लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना का ये पहला भारत दौरा है। शेख हसीना इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। ज्यादा जानकारी बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट में।
अपने 3रे कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे को भारत सरकार भी बहुत महत्व दे रही है। हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हसीना के बीच बातचीत भी हुई थी। ये संयोगी है कि शेख हसीना ने 3री बार चुनाव जीता है जबकि नरेंद्र मोदी 2री बार प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि दोनों ही देश अपनी चिंताओं पर भी बात करेंगे।
देखिए, ये विजिट एक तो पहला विजिट है उनके 3rd टर्म का, क्योंकि जब से वो इलेक्शन जीती हैं तब से कोई विजिट नहीं हुआ है। और मुलाकात तो इनकी हो गई है न्यूयॉर्क में एक बार, तो उसमें जो बातचीत हुई है उसी का सिलसिला अब यहाँ जारी रहेगा और जो भी है, जो हमारे बायलैटरल जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत जरूर होगी। दोस्तों के बीच में मधुर बातें भी होती हैं और फिर जो मधुर नहीं है उसमें वो भी होती है। फ्रैंक और मैच्योर रिलेशनशिप है, इसमें भी बातें होंगी। वो अपने जो उनके जो चिंताएं हैं, व्यवस्था का मसला तो हमारे यहाँ फंसा हुआ है उसके यहाँ।
जानकारों का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। वर्ष 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था, मगर 2014 के बाद फिर से ये मुद्दा दोबारा इस साल आम चुनाव में भी उठाया गया। दोनों देशों के बीच संबंधों पर नजर रखने वाली ज्योता भट्टाचार्य कहती हैं कि इन सब के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच पुराने लंबित मामलों को भी दोनों देशों ने मिलकर सुलझाया भी है।
2014 के इलेक्शन में माइग्रेशन बांग्लादेश से जो घुसपैठ की एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया था, लेकिन इसके बाद ज्यादातर कुछ काम हुआ नहीं है, बल्कि हम लोग और भी जो मित्रता है और रिलेशनशिप और भी प्रोग्रेस किया है। हमने लैंड बाउंड्री सॉल्व कर लिया है और इकोनॉमिक रिलेशंस और भी गहरा हुआ है, तो उसे और तो कनेक्टिविटी का भी बहुत ही स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रेंथन हो गया है। हम लोग इनलैंड वाटर पे स्प्रेड कर रहे हैं, इनलैंड वाटर को और भी कैसे इसको बेहतर इस्तेमाल किया जा सके उसको देख रहे हैं। लेकिन जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात है, उसमें जो आश्वासन दिया गया है उसी पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तारों को लगाने का काम जारी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि इससे दोनों ही मित्र देशों के बीच संबंधों में तल्खियां पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर असम में NRC की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, मगर दिल्ली में मौजूद बीबीसी बांग्ला के वरिष्ठ संवाददाता शुभज्योति घोष कहते हैं।
बांग्लादेश का जो एनवॉय हाई कमिश्नर दिल्ली में है सैयद मौजम अली, उससे मैंने पिछले हफ्ते बात किए। उन्होंने मेरे को बोला, देखिए इसमें हमने एक तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही आप कह सकते हो, क्योंकि काउ स्मगलिंग इससे बंद हुआ और हमने कैटल प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में हमने सेल्फ रिलायंट हो गया। इस बार जो कुर्बानी का ईद हुआ उसमें इंडियन काउ का उतना डिमांड बांग्लादेश में नहीं था, उसका वजह यही फेंसिंग है। सो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश का पोजीशन पूछे तो बांग्लादेश का पोजीशन अभी भी यही है कि हम फेंसिंग तब भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दो फ्रेंडली नेबर के बीच ऐसे फेंसिंग होना नहीं चाहिए।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत के 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। इस दौरान वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल हो रही हैं, जिसमें 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात शनिवार को होगी। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
अमरीका एक मिसाइल की वजह से भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत इस मिसाइल को रूस से खरीदने वाला है, लेकिन अमरीका को इस पर आपत्ति है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए मैंने बात की BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी से।
दरअसल मामला ये है कि भारत रूस से एक मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला है जिसका नाम है S-400, लेकिन अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि अगर भारत ने ये खरीदारी की तो उस पर अमरीकी प्रतिबंध लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और रूस के बीच की तनातनी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा है कि उन्हें लगता है कि वो इस सौदे के लिए अमेरिका को मना लेंगे, लेकिन उसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द हिंदू अखबार को एक ईमेल के जरिए बताया है कि ऐसा कोई भी सौदा भारत के लिए मुसीबत बन सकता है और अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस ईमेल में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने लिखा है कि हम अपने सहयोगियों से अपील करते हैं कि वो रूस के साथ कोई भी ऐसा सौदा करने से बचें जिसकी वजह से उन पर काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगने का खतरा हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई तनाव आ गया है या ये प्रतिबंध खासतौर पर भारत के लिए हैं। दरअसल ये प्रतिबंध हर उस देश पर लागू होंगे जो अमेरिका के काट्सा कानून का उल्लंघन करेगा।
ये काट्सा कानून क्या है?
जैसा कि इस कानून के नाम से ही समझ आ रहा है कि अमेरिका इस कानून के जरिए अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है और उनके सौदे तुड़वाने की कोशिश करता है। अमेरिका के घोषित विरोधी हैं रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। रूस के मामले में अमेरिका का ये कानून उन देशों को रोकता है जो रूस के साथ हथियारों का सौदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी संसद ने 2017 में इस प्रतिबंध कानून को पास किया था। 2 अगस्त 2017 में इसे लागू किया गया था। तब से ही भारत में ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि इससे भारत रूस के रक्षा संबंधों खास तौर पर S-400 मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद पर असर पड़ सकता है।
क्या अमरीका ने इससे पहले किसी और देश पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं?
जी, चीन पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। वहाँ की चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उसके निदेशकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन पर यह प्रतिबंध इसलिए लगा था क्योंकि उसने रूस से SU-35 एयरक्राफ्ट और S-400 सिस्टम खरीदा था।
अच्छा गुरप्रीत, जिस मिसाइल सिस्टम को लेकर इतनी बात हो रही है प्रतिबंधों की, ये आखिर है क्या?
रूस में बनने वाले S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत सरकार खरीदना चाहती है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार कर सकती है। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें कई खूबियां हैं, जैसे S-400 एक साथ 36 जगहों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसमें स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलों को गिरने से पहले रास्ते में ही नष्ट कर देगा। S-400 को सड़क के रास्ते कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसके बारे में कहा जाता है कि 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। और रक्षा विश्लेषकों का यह मानना है कि S-400 के आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी।
रूसी मिसाइल सिस्टम की वजह से भारत पर लग सकता है अमरीकी प्रतिबंध, जानकारी दे रही थी BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी।
खबर सच है अगर BBC पर है।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने यानी लगभग 2 महीने से नज़रबंद रखा गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती दिल्ली के BBC स्टूडियो में आई, जहाँ उनसे BBC संवाददाता शकील अख्तर ने कश्मीर घाटी और वहाँ के मौजूदा हालात से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बात की।
अगर आप जम्मू कश्मीर के पैरामीटर्स और जिसको डेवलपमेंट इंडाइसेस कहा जाता है, जैसे लिटरेसी, एजुकेशन, कश्मीर में गुर्बत नहीं है, हालांकि जब इस बार 2 महीने पहले टूरिस्ट को निकाला गया, बहुत सारी तादाद में बिहारी वर्कर्स को निकाला गया। जो बिहार के वर्कर्स होते हैं वो कश्मीर में जाके मजदूरी करते हैं, और इसलिए मजदूरी करते हैं क्योंकि उनको वहां बेटर पे स्केल मिलता है। तो जैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि कश्मीरी अमन नहीं चाहते, स्टोन पेल्टर्स हैं उसलिए कर रहा है, बिल्कुल गलत किया। और अगर आप कोई इतना बड़ा डिसीजन लेते भी हैं तो लोगों को हक नहीं बनता कि आप उनको, ये जमहूरियत है कि आप उनसे पूछ के उनको कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाए।
हुकूमत का कहना है कि अगर वो लॉकडाउन हटा दे तो यही सिचुएशन फिर पैदा हो जाएगी, और वो बेहतरी के लिए कर रही है कि लोगों को बचाया जाए।
हालात क्यों खराब होंगे? क्योंकि इनने इतनी बड़ी हरकत की है। अगर ये डेवलपमेंट का कहते तो इन्हें बाइफरकेट क्यों किया स्टेट? ये कश्मीरीज को डिसएम्पावर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम आपको मजा चखाएंगे और हम आपको पूरा डिसएम्पावर करके छोड़ेंगे। डेवलपमेंट और इसका कोई दूर से कनेक्शन तक नहीं है। जब मेरी मदर की इनके साथ सरकार बनी थी 2015 में, इनको कितनी बार हमने कहा कि जो कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस दीजिए, कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला रहता है, डेवलपमेंट के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल है ना, तो इन्हें क्यों नहीं पावर प्रोजेक्ट्स तब वापस किए?
अगर आपकी बात मानी जाए जी, सारे इंटरनेट खोल दिया जाए, मोबाइल खोल दिया जाए, तो क्या सिचुएशन होगी फिर?
तो फिर तो कंट्री में क्राइम्स वगैरह, अगर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कहते हैं तो बाकी कंट्री में तो लिंचिस्तान बन गई है, हमारा मुल्क लिंचिस्तान बन गया है। तो ये आपका जस्टिफिकेशन बहुत गलत है। इनको पता है कि ये चाहते नहीं कि कश्मीर से अभी एक आवाज भी उठे, और एक बार जब इंटरनेट आ जाएगा तो लोग एक साथ शेयर कर पाएंगे कि इन 2 महीनों कैसे उनको कैद में रखा गया, कितनी तादाद में छोटे छोटे बच्चों को लिया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है। ये नहीं चाहते कि ये सारी चीजें सामने आए।
तो ये जो पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो स्पीच दी, جو پوری کشمیر پہ ہی کنسنٹریٹڈ تھی, اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہوگا وہاں پر, کیا اس کا اثر ہوا ہے؟
دیکھیے وہاں پہ تو لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ کوئی تو ہمارے لیے بات کر رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی سپیچ کے بعد لوگ بہت زیادہ تعداد میں باہر آئے, سڑکوں پہ آئے, انہوں نے نعرے وغیرہ شاؤٹ کیے, بیکاز دے فیل کہ جس ملک کے ساتھ ہم نے ایکسیڈ کیا وہ ڈیموکریٹک نہیں رہا ہے, وہ سیکولر نہیں رہا ہے, ہماری جو لیڈرشپ نے کیا کیا وہ صحیح فیصلہ تھا.
تو یہ بتائیے کہ کشمیر کا مستقبل اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟
اب میں کیا بولوں آپ کو, ابھی تو بالکل ہمیں اندھیرا ہی لگ رہا ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کشمیریز اب اس پوائنٹ پہ ہے کہ ان کو محبوبہ مفتی یا عمر عبداللہ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لیڈر لیس موومنٹ ہوگا, وہ جد و جہد کر کے اپنے حق چاہتے ہیں اور وہ ان کے لیے لڑیں گے ان اے پیسفل وے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ہے بالکل پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا لوگوں کو, ان کو اتنا بھی حق نہیں دے رہے کہ وہ پیسفلی پروٹیسٹ کر پائیں.
اور انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کا جو رجحان ہے جو ابھی موجودہ حالات کے بارے میں, ان کے بارے میں آپ کا کیا؟
مجھے بہت برا لگتا ہے, دیکھیے جب میں ٹویٹر پہ اپنی مدر کے ہینڈل پہ کوئی بھی چیز بولتی ہوں یا میں انٹرویو پہ بولتی ہوں تو کہتے ہیں آپ نے کشمیری پنڈتس کو نکالا, یو نو آپ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. جو چیز کشمیری مسلمز نے, اٹس ناٹ لائک کہ وائلنس ان کو افیکٹ کیا پنڈتس کو اور ہمیں نہیں کیا گیا. جب میں بچی تھی 9 سال کی تھی, میری مدر صبح جاتی تھی, مجھے یہ تک نہیں پتا تھا, اس وقت ملٹنسی بہت تھی, مجھے یہ تک نہیں پتا تھا میری ماں ایوننگ میں واپس میری والدہ میرے پاس آئیں گی. تو یہ کہنا کہ آپ نے پنڈتس کو نکالا ہے بہت غلط ہے. آپ پنڈتس کا جو درد ہے وہ آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. جو رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں, جو ساری میڈیا وغیرہ بھی ہے جو بہت پلائیبل ہے, وہ یہ سارا ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پنڈتس کے ساتھ کیا تو اب ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے. تو وہ لیڈرشپ جو ہسٹری کو ایسے انووک اور ڈسٹارٹ کرتی ہے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کنٹری کس ابھی دور سے گزر رہا ہے.
پی ڈی پی نیتا محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواددات شکیل اختر. اس سے پہلے جموں کشمیر کے راجپال کے صلاحکار نے آج یہ بات کہی کہ جن کشمیری نیتاؤں کو حراست میں لیا گیا ہے انہیں حالات دیکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک دھیرے دھیرے رہا کر دیا جائے گا. اب بات بہار کی, جہاں پہلے بھاری بارش, پھر پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں جل جماو اور اس کے بعد پیدا ہوئے حالات نے کئی طرح کے سوالوں کو جنم دیا ہے. ان سوالوں کے بیچ راجنیتی بھی ابھر کر سامنے آئی ہے. اس بارے میں میں نے پٹنہ میں ورشٹھ پترکار منیکانت ٹھاکر سے بات کی اور سب سے پہلے یہی جاننا چاہا کہ زمین پر حالات اب فی الحال کیسے ہیں.
دیکھیے اگر مکھیہ شہر اور آس پاس کے جل بھراؤ والے علاقے سے دھیرے دھیرے پانی گھٹنے کو حالات میں سدھار مانے تو سدھار ہوا ہے, لیکن ابھی بھی جو لو لائنگ ایریا ہے وہاں کے کچھ محلوں اور بستیوں میں تو 2-3 فیٹ تک پانی جمع ہے. اتنا ہی نہیں, اب جو سڑے ہوئے کچروں والے پانی کی درگندھ پھیلی ہوئی ہے, سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں, بجلی اور پینے کے پانی کی قلت بنی ہوئی ہے, تو یہ جو تمام مشکلیں برقرار ہیں وہ سرکاری غیر سرکاری مدد کے باوجود, تو اس کو لے کر چنتا زیادہ ہے لوگوں میں.
منیکانت جی, یہ بھی بتائیے لگے ہاتھ کہ یہ جو جل جماو اور پھر اس کے بعد جو اویوستھا کی نوبت آئی, یہ نوبت آنے کے پیچھے اصل وجہ کیا رہی؟ یہ استھتی کیا ٹالی نہیں جا سکتی تھی؟
اس بار جیسا وکرال جل جماو میں نے یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور کیوں ہوئی ایسی بری حالت, تو اب جو پتا چل رہا ہے وہ اس لیے ہوئی کیونکہ پٹنہ نگر نگم کھیتر کے پرائے سبھی چھوٹے بڑے نالے جام پڑے ہوئے تھے, اور جمع پانی نکالنے والے جو کل 38 سمپ ہاؤس ہیں یہاں, ان میں سے 1-2 ہی شروع میں چالو ہو سکے, باقی سب خراب پڑے ہوئے تھے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرینیج سسٹم اور سیویج سسٹم کی زمینی سنرچنا لگ بھگ فیل تھی. 3 سال پہلے منظور کیے گئے ماسٹر پلان میں ڈرینیج نیٹورک کا جو نقشہ تیار کیا گیا تھا اس پر یا تو کام شروع ہی نہیں ہوا, یا شروع ہوا بھی آدھی ادھوری استھتی میں پڑا رہ گیا. نگر وکاس وبھاگ, نگر نگم اور ایجنسی بڈکو کے افسران اور انجینئر اسمارٹ سٹی یوجنا کے چکر میں ڈرینیج سسٹم کا اور بھی گڑ گوبر کر بیٹھے. یعنی بہت سے نالوں کے منہ بند کر دیے گئے تھے وہ بھی برسات سے پہلے, بھلا بتائیے کہ ایسے میں جل پرلے جیسا قہر نہ ہوتا تو کیا ہوتا.
ظاہر سی بات ہے منیکانت جی, اس پر راجنیتی کس طرح سے ہو رہی ہے اس پورے گھٹنا کرم کے ارد گرد؟
جن وبھاگوں سے جڑا ہوا یہ پورا مسئلہ ہے ان کے منتری, پٹنہ کے سانسد اور ودھائک سب بی جے پی کے ہیں, اور یہ سارے نیتا اور سمبندھت ادھیکاری شروع میں خاموش بیٹھے رہے. اپ مکھیہ منتری سوشیل مودی تو खुद राजेंद्र नगर में 3 दिनों तक कथित रूप से फंसे होने के बहाने चुप्पी साधे रहे और अब जाके हकीकत और सरकारी लापरवाही, कुव्यवस्था या विफलता खुलकर सामने आ गई है, तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं या पाए जाएंगे उन्हें जांच के बाद दंडित होना पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब एक सुर में बीजेपी के बिहारी नेता सारा दोष सरकारी अधिकारियों पर मढ़ने लगे हैं। मतलब साफ है कि सत्ता के दोनों साझेदार एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर आम लोगों के गुस्से से बचने वाला खेल खेलने लगे हैं। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अलगाव वाली रणनीति में बीजेपी इससे मुद्दा भी न बना ले।
ये थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
आज बृहस्पतिवार है और सोमवार के बाद यही वो दिन है जब बारी आती है श्रोताओं की चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और मैं हूं सुशीला सिंह। और राजेश जी, पहले पोस्टकार्ड से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये है आप ही के नाम से, राजेश कुमार पांडे, और ये टांडा अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि हमसे पूछिए कार्यक्रम मेरा सबसे प्रिय कार्यक्रम हुआ करता था, जिसे मेरे बच्चे भी बड़ी उत्सुकता से सुनते थे। राजेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को बंद करने पर सफाई पेश की कि आजकल आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए गूगल उपलब्ध है, इसीलिए हमसे पूछिए कार्यक्रम की कोई अहमियत नहीं है। मुझे राजेश जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बात पर शेर ये अर्ज करना चाह रहे हैं और इनका शेर है, मेरे जख्मों की कुछ इस तरह की दवा उसने की कि मरहम भी अगर लगाया तो काटो की नोक से। ये लिखते हैं, वैसे तो चोट अपने ही पहुंचाते हैं, गैर कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता। राजेश जोशी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं, कृपया उन तक ये पत्र जरूर पहुंच जाए।
राजेश जोशी जी तक पहुंच जाएगा, अभी फिलहाल राजेश प्रियदर्शी तक पहुंचा है राजेश जी का पत्र। राजेश जी, जो जोशी जी कह रहे थे उसका मतलब सिर्फ ये है, हम नए कार्यक्रम कैसे शुरू कर पाएंगे अगर हम पुराने कार्यक्रमों में तब्दीली न करें, उनकी जगह नए कार्यक्रम न शुरू करें। तो हमें लगा कि जो जानकारी और सूचना है वो तो उपलब्ध है इंटरनेट पर और वैसे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो पूरा का पूरा विश्लेषण है वो हम आपको देना चाहते थे। इसकी वजह से हमने दुनिया जहान जैसा कार्यक्रम शुरू किया।
जी, अगला ईमेल अमित रंजन का है। ये लिखते हैं कि अगर मेरी याददाश्त सही है तो मधुकर उपाध्याय जी सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं बीबीसी हिंदी टीम के पुराने सदस्य भी रहे। गांधी जी की 150वीं जयंती पर इनके द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला काफी दिलचस्प लग रही है, ये अत्यंत सराहनीय है। इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं जो आमतौर पर हमारी जानकारी में नहीं है, रोशनी डालने की कोशिश की है। हम उम्मीद भी लगा रहे थे कि इस अवसर पर बीबीसी हिंदी से कुछ नया सुनने को जरूर मिलेगा, इसलिए काफी अच्छा लगा।
बहुत शुक्रिया आपका। मधुकर उपाध्याय ने गांधी का बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, उन्होंने गांधी पर पहले भी काम किया है, उन्होंने गांधी की दांडी यात्रा पर किताब भी लिखी है और वो अच्छे प्रसारक हैं, हम लोगों के सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, यहाँ लंबे समय काम कर चुके हैं और हमें लगा कि गांधी के किस्से बहुत अच्छी तरह से वो सुना सकते हैं। आपको अच्छा लगा, ये बात हम उन तक पहुँचा देंगे।
साथ ही ये लिखते हैं कि दुनिया जहाँ में आदर्श राठौर जी ने चीन की 70वीं वर्षगांठ पर जो प्रस्तुति की वो बेहतरीन थी। इसी से ही जुड़ा एक और ईमेल है मेरे पास विकास शर्मा का, इन्होंने कुरुक्षेत्र से लिखा है, दुनिया जहाँ में चीन पर आदर्श जी की प्रस्तुति सुन रहा हूँ। इनका कहना है कि दो जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातों को जस का तस लिया गया है और ये कह रहे हैं कि प्रस्तुता की समझ और अनुभव जैसे नदारद है। वैसे तो हर विषय को बहुत गहरे से समझना संभव भी नहीं होता प्रस्तुता के लिए, फिर भी विशेष प्रस्तुति के लिए सामान्य से कुछ ज्यादा पकड़ हो विषय पर तो बेहतर है। साथ ही ये लिखते हैं कि एक ये भी कि चीन के मामलों पर दो विशेषज्ञ बहुत बढ़िया नज़र रखते हैं, पर शायद ये भी प्रयास किया जाए कि कुछ और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। हर कार्यक्रम में इन्हीं की राय सुनने में ये लगता है कि ये कहीं बीबीसी के स्थायी स्टाफ तो नहीं हो गए हैं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और जो अच्छे विशेषज्ञ होते हैं जाहिर है कि हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम हमेशा अच्छे विशेषज्ञों की तलाश में रहते हैं, उन्हें ढूंढते रहते हैं ताकि हम उनकी जानकारी, उनका ज्ञान आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया।
अगला ईमेल है कर्नल प्रहलाद सिंह रंधावा का और इन्होंने जलंधर पंजाब से लिखा है। ये लिखते हैं कि आपने कश्मीर के हालात की वजह से प्रसारण का समय 1 घंटा किया, अब आपने दोबारा 30 मिनट का प्रसारण कर दिया है। क्या अब कश्मीर के हालात नॉर्मल हो गए हैं? क्या आपको लग रहा था कि कश्मीर में बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, लेकिन ना होने पर निराशा और हताशा हुई है? इसने आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। खैर जो भी हो, मैं बीबीसी को 70 के दशक से सुनता आ रहा हूं और सुनता रहूंगा।
बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुनते हैं और सुनते रहेंगे। और हमने ये समझकर कार्यक्रम का समय बढ़ाया था क्योंकि हमें ये लग रहा था कि कश्मीर से जो खबरें आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं और नहीं मिल रही है, वो इंटरनेट और फ़ोन के बंद होने की वजह से। अब जो लैंडलाइन फ़ोन की सेवा शुरू हुई है उसके बाद से स्थितियों पर हमने नज़र रखी, उसकी समीक्षा की और हमें ये लगा कि फ़िलहाल ये हमें आधे घंटे के कार्यक्रम पर जैसे पहले होता था वैसे लौट जाना चाहिए। निराशा या हताशा जैसी कोई बात नहीं है, शांति है, अच्छी बात है, शांति बनी रहे, हम भी यही चाहेंगे। लेकिन जब हमें लगता है कि सूचनाओं का अभाव है, खबरें आप तक नहीं पहुँच रही हैं, खबरें पहुँचाना हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। पत्र लिखने के लिए रंधावा साहब का शुक्रिया। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
श्रोताओं की चिट्ठियों के बाद बारी है खेल समाचार की।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां पर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में अब दबाव मेहमान टीम यानी कि दक्षिण अफ्रीका पर है। भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल की 215 और रोहित शर्मा की 176 की बड़ी पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पारी 7 विकेट पर 502 रन बनाकर घोषित की। दोनों ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 317 रन की साझेदारी की। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का ने लिया था और दूसरे दिन का खेल खत्म होने के करीब 40 मिनट पहले पारी घोषित की। रविंद्र जडेजा 30 और रविचंद्रन अश्विन 1 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए स्पिनर केशव महाराज सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 189 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। जवाब में दूसरे दिन स्टम्प्स के समय दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी का स्कोर 3 विकेट खोकर 39 रन है। और टेनिस के कोर्ट पर युवा भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ATP चैलेंजर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ब्राजील में चल रही इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में पुर्तगाल के गास्ताओ एलियास को हराते हुए सुमित नागल आगे बढ़े। और आज से रशिया में शुरू हो रहा है विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर मैरी कॉम के अलावा इंडिया ओपन के स्वर्ण पदक विजेता नीरज, जमुना बोरो, सरिता देवी और मंजू रानी जैसे खिलाड़ी मुकाबला करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि आज किसी भी भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला नहीं है।
खेल समाचारों के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें पुनः सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर सहमति दे दी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद नज़रबंद किए गए नेताओं को एक एक करके रिहा किया जाएगा। पेरिस पुलिस बल के मुख्यालय के बाहर एक शख्स ने चाकू से लोगों पर हमला किया है। इस घटना में 4 अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस संघ के प्रवक्ता ने बताया है कि हमलावर मुख्यालय में काम करता था। हमलावर को घटनास्थल पर ही मार दिया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इराक की राजधानी बगदाद में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इलाके में सुबह से लगे कर्फ्यू को तोड़ते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई हिंसक झड़पें हुई हैं। बगदाद में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।